परिशिष्टाचार भूमिकर सुधार 1873 से 1881, द लैंड टैक्स रिफॉर्म ऑफ 1873 टू 1881, पृष्ठ संख्या 161। तोकुगावा शोगुनेत की समाप्ति के बाद जो महत्वपूर्ण सुधार आरंभ हुए उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1873 से 81 का भूमिकर सुधार। इस सुधार की मुख्य उपलब्धि थी आमूल भूमिकर संशोधन। इस सुधार ने जापान में आधुनिकीकरण की नींव रखी। मेजी सरकार लगभग कंगाल हो चुकी थी तथा वह राजस्व के किसी अस्थायी स्रोत की तलाश में थी ताकि आधुनिकीकरण को जारी रखा जा सके। इसलिए अस्थायी बजट व्यवस्था और जरूरी राजस्व वसूली के लिए राष्ट्रीय राजस्व व्यवस्था में पूर्ण सुधार आवश्यक था। असमान संधि व्यवस्था में सुरक्षात्मक आयात कर लगाना संभव नहीं था, इसलिए एक ही उपाय था, आंतरिक राजस्व में सुधार। लेकिन आंतरिक राजस्व, विशेषकर उत्पादन शुल्क और मुद्रांक शुल्क में वृद्धि, घरेलू उद्योग धंधों के विकास एवं समृद्धि से जुड़ी हुई थी। परंतु इस क्षेत्र में संकेत आशानुकूल नहीं थे, इसलिए यह आवश्यक था कि देश भर में भूमि कर को एक समान बनाया जाए जो न केवल भू उपयोगिता पर हो बल्कि उसकी उपयोगिता में तार्किक समानता भी हो। 28 जुलाई 1873 को सरकार ने भूमिकर सुधार कानून जारी किया। भूमिकर की दर तय करने से पहले सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अगर एक बार समानता और निष्पक्षता को ध्यान में रखकर उतना राजस्व कर भी लगाया जाए जितना तोकुगावा काल में था, तब भी जनता को बोझ महसूस नहीं होगा। यह तय हुआ कि कर की दर भूमि मूल्य का 3% भू राजस्व के रूप में और 1% स्थानीय अतिरिक्त कर के रूप में तय किया गया। इससे साल भर में कुल राजस्व की 34% प्राप्ति हुई। भूमि जांच का काम भू स्वामियों पर छोड़ दिया गया, जिन्हें यह सलाह दी गई कि वे भूमिकर सुधार कानून की जांच के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अपना दावा पेश करें। इन उदाहरणों के अनुसार एक तान लगभग 1/4 एकड़ की उपज को पहले उसके बराबर के रोकड़े में आंका गया, फिर इस संपूर्ण मूल्य में से बीज और खाद्य का मूल्य अर्थात कुल प्राप्ति का 15%, भूमि कर 3% और स्थानीय अतिरिक्त कर भूमि कर का 3% को घटाकर शेष राशि पर 6 से 7% भूमि स्वामियों की भूमि पर तथा 4 से 5% पट्टेदारों की भूमि पर भूमि कर निर्धारित किया गया। भू स्वामियों के लिए राजस्व की दर उनकी कुल उपज के आधार पर तय की गई। कर उनके द्वारा दिए गए 68% लगान के आधार पर तय किया गया। उपज का मूल्य साधारणतः तत्कालीन स्थानीय दर के अनुसार तय किया जाता था। किसानों द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को भी स्वीकार कर लिया जाता था। यदि वे अनुमानों से 10% से अधिक कम नहीं होते तो इस प्रकार कर का सरकारी आरोपण पूर्व निर्धारित होता, न कि जैसी उपज हो वैसा। 12 मई 1874 को इस कानून में एक संशोधन किया गया। इस संशोधन में यह ध्यान रखते हुए कि बाद में बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव हो सकता है, भूमि मूल्य को उसी समय से निर्धारित माना गया जब भूमिकर सुधार ने आधिकारिक मान्यता प्राप्त की। सरकार ने आरंभ में इसे 5 वर्षों के लिए लागू किया। बाद में जब मूल्य निर्धारण में देर हुई तो सरकार ने कुछ सख्ती का आदेश लागू किया। 7 अक्टूबर 1875 को सरकारी अधिसूचना द्वारा यह घोषणा की गई कि अगर इसी तरह का रवैया रहा तो सरकार को मजबूर होकर उन जमींदारों के खिलाफ जांच के पुराने तरीकों को लागू करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी भूमि का अस्वीकार योग्य मूल्य दर्शाया। पुराने तरीकों का अर्थ था भारी बोझ, क्योंकि नए भू सर्वेक्षण ने भू धारणा की सीमा बढ़ा दी थी। यह तरीका असफल साबित हुआ। परिणाम स्वरूप 12 मई 1876 को सरकार ने यह घोषणा की कि विवादित भूमि के मूल्य का निर्धारण पड़ोस की उस भूमि के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिसका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा हुआ हो। एक भू सुधार संस्था को इस काम में लगाया गया। भूमि की किस्म का वर्गीकरण क्षेत्रीय स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक कर दिया गया। उपज और भौगोलिक अवस्था को ध्यान में रखकर भूमि की किस्म का वर्गीकरण कर निर्धारक अधिकारी स्वयं करते थे। तदुपरांत इस योजना में आदर्श गांव के तरीके का प्रयोग भी किया गया। इस वर्गीकरण निर्धारण ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता कायम करने में तथा भू सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। स्थानीय करों का निर्धारण भू सुधार संस्था द्वारा पहले के कर, स्थानीय जांच के परिणाम और जनसंख्या एवं खाद्य उपभोग को ध्यान में रखकर किया गया। यह निर्धारण उतना दृढ़ नहीं था पर समायोजन योग्य था। इस कार्य की महत्ता और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर परियोजनाएं 8 वर्षों में पूरी हो गई। इस योजना के पूरा होने से मेजी सरकार को इच्छानुसार परिणाम प्राप्त हुए। अब सरकार अधिकाधिक भू स्वामियों से बढ़े हुए कर वसूल करने योग्य हो गए। सरकार इस हालत में थी कि निजी भूमियों पर भी निष्पक्षता के साथ करारोपण कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने स्थानीय परिपाटियों की अवहेलना की। इसने देश भर में असंतोष को जन्म दिया और सरकार को समझौता करना पड़ा। 4 जनवरी 1877 को सरकार ने भूमि कर और स्थानीय कर को 0.5% घटा दिया। हालांकि इसने किसानों पर बोझ नहीं घटाया क्योंकि चावल के मूल्य छोटे किसानों के लिए लाभदायक नहीं थे। फिर भी किसानों की आय बढ़ी क्योंकि नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ा, प्रभावकारी कृषक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा और रोजगार के नए अवसर मिले। साथ ही निर्धारित कर कुल आय का छोटा सा हिस्सा ही था। हालांकि कर एक समान हो गए थे लेकिन भूधारण एक समान नहीं हुआ। छोटे किसानों के पास कर देने के बाद इतना नहीं बचता था कि जीवन यापन कर सके। खराब फसल होने पर या चावल की कीमत कम होने पर किसान दबाव में आ जाते थे और महाजन से ऊंची दरों पर कर्ज लेकर कर चुकाते थे। बढ़ते उधार खातों और गिरवी को छुड़ाने के लिए किसान पट्टेदार बनने लगे। इससे जमींदारी व्यवस्था का पोषण हुआ। इसका सकारात्मक पक्ष यह था कि धनी किसानों ने वह धन प्रदान किया जो खेती के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी प्रवाहित हुआ। भूमि कर सुधार व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था और संस्थागत ढांचे के सुधार में उस समय योगदान दिया जब आधुनिकीकरण अपनी प्रारंभिक अवस्था में था।